व्यवस्था विवरण पेंटाटेच की पांचवी पुस्तक ड्यूटेरोनॉमी है, जो द लॉ रिपीटेड या कानून की दूसरी घोषणा का प्रतीक है। डिक्सन बाइबल से यह प्रस्तुति आम तौर पर संख्याओं में संक्षेपित किए गए विवरण के बिना पहचान करेगी। ये वे शब्द हैं जो मूसा ने जॉर्डन के पूर्व रेगिस्तान में सभी इसराइल से कहे थे। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब में हमसे कहा, तुम इस पर्वत पर बहुत दिन तक रह चुके हो। छावनी तोड़ो और एमोरियों के पहाड़ी देश में आगे बढ़ो, अराबा में, पहाड़ों में, पश्चिमी तलहटी में, नेगेव में और तट के किनारे, कनानियों की भूमि और लेबनान तक, महान नदी परात तक, सभी पड़ोसी लोगों के पास जाओ। देख, मैंने यह भूमि तुझे दे दी है। अंदर जाओ और उस देश पर कब्जा करो जिसके बारे में यहोवा ने कसम खाई थी कि वह तुम्हारे पूर्वजों इब्राहीम, इसहाक और याकूब और उनके बाद उनके वंशजों को देगा। अपने प्रत्येक गोत्र में से कुछ बुद्धिमान, समझदार और सम्मानित पुरुषों को चुनो और मैं उन्हें तुम्हारे ऊपर नियुक्त करूंगा। आओ हम मनुष्यों को हमारे लिए देश का भेद लेने के लिए आगे भेजें और जिस मार्ग से हमें जाना है और जिस नगर में हम आएंगे उसके विषय में रिपोर्ट लेकर आएं। यह एक अच्छी भूमि है जिसे प्रभु हमारा परमेश्वर हमें दे रहा है, परंतु तुम ऊपर जाने को तैयार नहीं थे। तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह किया। तुम अपने तंबू में बड़बड़ाते रहे। जब यहोवा ने तेरी बातें सुनी तब क्रोधित हुआ और गंभीरता से शपथ खाकर कहा, इस दुष्ट पीढ़ी का एक भी मनुष्य उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी। जैसा कि प्रभु ने मुझे निर्देश दिया था, हम पीछे मुड़े और लाल सागर के मार्ग से रेगिस्तान की ओर चल पड़े। हम बहुत देर तक सेईर के पहाड़ी देश में घूमते रहे। कादेश बर्निया छोड़ने से लेकर जेरेद घाटी पार करने तक 38 साल बीत गए। तब तक लड़ने वालों की वह पूरी पीढ़ी शिविर से नष्ट हो चुकी थी। अब जब उन लोगों में से आखिरी योद्धा मर गया, तब यहोवा ने मुझसे कहा, आज तुझे आर में मोआब के क्षेत्र से होकर गुजरना होगा। अभी निकलो और अर्नोन कंठ को पार करो। देख, मैं हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन और उसके देश को तेरे हाथ में कर देता हूँ। तब हम मुड़े और बाशान की ओर के मार्ग पर चढ़ गए और हमारे परमेश्वर यहोवा ने बाशान के राजा ओग को उसकी सारी सेना समेत हमारे हाथ में कर दिया। हे इसराइल, जो विधि और नियम मैं तुझे सिखाने पर हूँ उनको सुन। उनके पीछे हो लो कि तुम जीवित रहो और उस देश में जाकर अपने अधिकारनेई हो जाओ जो तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है। जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उसमें न बढ़ाना और न घटाना, परंतु जो आज्ञा मैं तुझे अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा देता हूँ उसका पालन करना। देखो, मैंने तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार विधियां और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारनेई होने को तुम जा रहे हो उसमें तुम उनका पालन करो। उन्हें ध्यान से देखो, क्योंकि इससे अन्य जातियों को तुम्हारी बुद्धि और समझ प्रकट होगी और वे इन सब विधियों के विषय में सुनेंगे और कहेंगे, निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार लोग है। और कौन जाति ऐसी बड़ी है कि अपने देवताओं को समीप रखें जिस प्रकार हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे समीप रहता है जब भी हम उससे प्रार्थना करते हैं? और कौन सी जाति इतनी महान है जिसके पास इतनी धर्मी विधियां और व्यवस्थाएं हैं जितनी कि मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं? परंतु सावधान रहो और अपने ऊपर ध्यान रखो, ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हैं उन्हें जब तक तुम जीवित रहो भूल न जाओ और जब तक जीवित रहो तब तक उनको अपने हृदय से न भूल जाओ। इन्हें अपने बच्चों को और उनके बाद उनके बच्चों को सिखाओ। उस दिन को स्मरण करो जब तुम होरेब में अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हुए थे, जब उसने मुझसे कहा, लोगों को मेरे वचन सुनने के लिए मेरे सामने इकट्ठा कर कि जब तक वे देश में जीवित रहें तब तक मेरा आदर करना सीखें और सिखाएं। उनके बच्चे तुम पास आए और पहाड़ के नीचे खड़े हो गए, जबकि वह आकाश तक आग से धधक रहा था, काले बादल और गहरा अंधेरा। तब यहोवा ने आग में से तुमसे बातें की। तूने शब्दों का शब्द तो सुना, परंतु रूप नहीं देखा, केवल एक आवाज थी। उसने तुम्हें अपनी वाचा 10 आज्ञाएं घोषित की, जिनका तुम्हें पालन करने का आदेश दिया, और फिर उन्हें 2 पत्थर की पट्टियों पर लिखा। और उस समय यहोवा ने मुझे निर्देश दिया कि मैं तुम्हें वे विधियां और नियम सिखाऊं जिनका तुम्हें उस देश में पालन करना होगा जिसके अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जा रहे हो। इसलिए तुम बहुत सावधान रहना, ऐसा न हो कि तुम भ्रष्ट होकर अपने लिए कोई मूर्ति व किसी रूप की मूरत बनाओ, चाहे वह पुरुष की हो, चाहे स्त्री की, व पृथ्वी पर के किसी पशु की, व आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी की नाई हो, हवा या जमीन पर चलने वाले किसी प्राणी या नीचे के पानी में किसी मछली की तरह। और जब तू आकाश की ओर देखे और सूर्य, चंद्रमा और तारागण वरन सारे आकाशीय समूह को देखे, तो उनको दंडवत करने और जो वस्तुएं तेरे परमेश्वर यहोवा ने आकाश के नीचे की सब जातियों को बांट दी हैं, उनको दंडवत करने का लोभ न करना। परंतु जहां तक तुम्हारी बात है, यहोवा ने तुमको लोहा गलाने की भट्ठी में से अर्थात मिस्र से निकाल लिया कि उसके निज भाग के लोग बन जाओ, जैसे तुम अब हो। सावधान रहो कि जो वाचा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे साय बांधी है उसे न भूलो। तुम अपने लिए किसी ऐसी वस्तु की मूर्ति न बनाना जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मना किया हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग और जलन रखने वाला परमेश्वर है। सो यदि तुम भ्रष्ट हो जाओ और किसी प्रकार की मूर्ति बनाओ और अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा करके उसे क्रोध दिलाओ, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके बुलाता हूँ कि तुम जिस देश में तुम हो उसमें से शीघ्र नाश हो जाओगे। कब्जे के लिए जॉर्डन पार कर रहे हैं, तुम वहां अधिक समय तक जीवित तो नहीं रहोगे, परंतु नष्ट अवश्य हो जाओगे। यहोवा तुम्हें देश देश के लोगों के बीच तितर बितर कर देगा और तुम में से केवल कुछ ही जीवित बचेंगे। परंतु यदि तुम वहां से अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे और अपने सारे मन और सारे प्राण से ढूंढोगे, तो वह तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम संकट में पड़ो और ये सब बातें तुम्हारे साथ घटे, तब बाद के दिनों में तुम यहोवा अपने परमेश्वर के पास लौट आओगे और उसकी आज्ञा मानोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा दयालु परमेश्वर है। वह तुम्हें न त्यागेगा, न नष्ट करेगा, न उस वाचा को भूलेगा जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाकर बांधी थी। मूसा ने 10 आज्ञाओं को दोहराया और अंत में कहा, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें जो आज्ञा दी है उसे करने में सावधान रहना, दाईं ओर या बाईं ओर न मुड़े। जिस मार्ग की आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी है उसी के अनुसार चलो, जिससे तू जीवित रहे और उन्नति करे और उस देश में जो तू अधिकारी होगा उसमें बहुत दिन तक जीवित रहे। हे इसराइल सुनो, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। और ये वचन जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे तुम्हारे हृदय पर बने रहेंगे। तू इन्हें अपने बाल बच्चों को मन लगाकर सिखाना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। तू उन्हें चिन्हान के लिए अपने हाथ पर बांधना और वे तुम्हारी आंखों के बीच में झिलम का काम करें। तू इन्हें अपने घर की चौखटों और फाटकों पर लिखना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना। जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में पहुंचाएगा जिस पर तुम अधिकार करने को जा रहे हो और तुम्हारे आगे से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल देगा, और जब यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया है और तुमने उन्हें हरा दिया है, तो तुम्हें उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। उनसे संधि न करना और न उन पर दया करना। उनके साथ अंतरजातीय विवाह न करें, अपनी बेटियां उनके बेटों को न देना और न उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तुम्हारे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाकर पराए देवताओं की उपासना करा देंगे और यहोवा का कोप तुम्हारे विरुद्ध भड़क उठेगा और शीघ्र ही तुम्हें नष्ट कर डालेगा। यदि तुम इन नियमों पर ध्यान दोगे और उनका पालन करने में सावधान रहोगे तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ अपनी प्रेममय वाचा का पालन करेगा, जैसा उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाकर बांधा है। वह तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हें आशीर्वाद देगा। आज मैं तुम्हें जो भी आदेश दे रहा हूँ उसका पालन करने में सावधान रहना। स्मरण करो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन 40 वर्षों में तुम्हें जंगल में सारे रास्ते किस प्रकार ले आया, कि वह तुम्हें नम्र करे और तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम्हारे मन में क्या है और तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने आपको नम्र किया, आपको भूखा रखा और फिर आपको मन्ना खिलाया, जिसे न तो आप और न ही आपके पिता जानते थे, आपको यह सिखाने के लिए कि मनुष्य केवल रोटी पर नहीं बल्कि प्रभु के मुख से निकलने वाले हर शब्द पर जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में आपके कपड़े पुराने नहीं हुए और आपके पैर नहीं सूजे। तो अपने मन में जान लो कि जैसे मनुष्य अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ताड़ना देता है। जब तुम अच्छे घर बनाओगे और तुम्हारे गाय बैल और भेड़ बकरियां बढ़ जाएंगी और तुम्हारी चांदी सोना बढ़ जाएगा और तुम्हारा सब कुछ बढ़ जाएगा, तब तुम्हारा मन घमंड से भर जाएगा और तुम यहोवा अपने परमेश्वर को भूल जाओगे। यदि तू कभी अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर पराए देवताओं के पीछे हो ले और उनको दंडवत करे और दंडवत करे, तो मैं आज तेरे विरुद्ध गवाही देता हूँ कि तू निश्चय नाश हो जाएगा। और अब हे इसराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सब मार्गों पर चले, उससे प्रेम करे और अपने परमेश्वर यहोवा की अपने सारे मन और सारी आत्मा से सेवा करे। और यहोवा की जो आज्ञाएं और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको तेरे ही हित के लिथे मानना। स्वर्ग, यहाँ तक कि सर्वोच्च स्वर्ग, पृथ्वी और उसमें मौजूद सभी चीजें आपके परमेश्वर यहोवा की हैं। तो भी यहोवा ने तुम्हारे पुरखाओं पर अपना स्नेह रखा और उनसे प्रेम रखा और उसने सब जातियों में से तुमको अर्थात उनके वंश को चुन लिया, जैसा आज प्रकट है। इसलिए अपने हृदयों का खतना करो और आगे को हठीले न बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा देवताओं का परमेश्वर और प्रभुओं का परमेश्वर है। वह महान, पराक्रमी और भययोग्य है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न रिश्वत लेता है। वह अनाथों और विधवाओं का मुकदमा लड़ता है और परदेशियों से प्रेम रखता है और उसे भोजन और वस्त्र देता है। और तुम परदेशियों से प्रेम रखना, क्योंकि तुम आप ही मिस्र में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा करो, उसे दृढ़ता से थामे रहो और उसके नाम पर अपनी शपथ खाओ। ये वे नियम और कानून हैं जिनका तुम्हें उस देश में पालन करने में सावधानी बरतनी चाहिए जो तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, जब तक तुम उस देश में जीवित रहोगे। ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर और हर फैले हुए पेड़ के नीचे के सभी स्थानों को पूरी तरह से नष्ट कर दो, जहां जिन राष्ट्रों को तुम बेदखल कर रहे हो वे अपने देवताओं की पूजा करते हैं। उनकी वेदियों को तोड़ डालो, उनकी पवित्र मणियों को तोड़ डालो और उनकी अशेरा नाम लाठों को आग में जला दो, उनके देवताओं की मूर्तें काट डालो और उन स्थानों से उनका नाम मिटा दो। तुम्हें उनके तरीके से अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना नहीं करनी चाहिए, परंतु तुम उस स्थान की खोज करना जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से अपना नाम निवास करने के लिथे चुन लेगा। उस स्थान पर तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, वहां अपने होमबलि, मेलबलि, दशमांश और विशेष भेंट, जिन्हें देने की तुमने मन्नत मानी हो, ले आओ। जैसा कि हम आज यहां करते हैं, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए जैसा वह उचित समझता है, क्योंकि तुम अभी तक उस विश्राम स्थान और उस विरासत तक नहीं पहुँचे हो जो प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देता है। सावधान रहो कि तुम अपनी होमबलि कहीं भी न चढ़ाओ। उन्हें केवल उसी स्थान पर चढ़ाओ जिसे यहोवा तुम्हारे गोत्रों में से किसी एक में चुन लेगा, और वहीं सब कुछ मानना जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। सावधान रहो कि जब तक तुम अपने देश में जीवित रहो तब तक लेवियों की उपेक्षा न करना। तुम इसमें से जितना चाहो खा सकते हो, परंतु यह जान लो कि तुम लोहू न खाओ, क्योंकि लोहू ही जीवन है। इसे जल की नाई भूमि पर बहा दो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से नष्ट कर देगा जिन पर तुम आक्रमण करके उन्हें बेदखल करने पर हो। परंतु जब तू उन्हें निकालकर उनके देश में बसा दे और जब वे तेरे सामने से नाश हो जाएं, तब सावधान रहना कि तुम उनके देवताओं के विषय में यह पूछकर फंस न जाओ कि ये जातियां अपने देवताओं की किस प्रकार उपासना करती हैं। हम भी वैसा ही करेंगे। तुम उनके ढंग से अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना न करना, क्योंकि वे अपने देवताओं की पूजा करते समय सब प्रकार के घृणित काम करते हैं जिनसे यहोवा घृणा करता है। यहाँ तक कि वे अपने देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए अपने बेटे-बेटियों को भी आग में जला देते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष के अंत में तुम्हें ऋण रद्द करना होगा। यदि उस देश के किसी नगर में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तेरे भाइयों में से कोई दरिद्र मनुष्य हो, तो अपने उस निर्धन भाई के प्रति कठोर मन या कठोरता न करना, बल्कि खुले हाथ रखें और उसे जो कुछ भी चाहिए उसे स्वतंत्र रूप से उधार दें। सावधान रहें कि इस दुष्ट विचार को मन में न रखें। यदि उस देश के किसी नगर में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तेरे भाइयों में से कोई दरिद्र मनुष्य हो, तो अपने उस निर्धन भाई के प्रति कठोर मन या कठोरता न करना, बल्कि खुले हाथ रखें और उसे जो कुछ भी चाहिए उसे स्वतंत्र रूप से उधार दें। सावधान रहें कि यह दुष्ट विचार मन में न रखें। 7वां वर्ष कर्ज चुकाने का वर्ष निकट है, ताकि आप अपने जरूरतमंद भाई के प्रति दुर्भावना न दिखाएं और उसे कुछ न दें। तब वह तुम्हारे विरुद्ध यहोवा से अपील कर सकता है और तुम पाप के दोषी ठहरोगे। उसे उदारतापूर्वक दो और बिना कुढ़ मन से ऐसा करो, तब इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में और जिस जिस काम में तू अपना हाथ लगाएगा उसमें तुझे आशीष देगा। देश में हमेशा गरीब लोग रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने भाइयों और अपने देश के गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति खुले हाथ रखो। मनाया जाने वाला पर्व। अपने परमेश्वर यहोवा का फसह मनाओ, क्योंकि आबीब महीने में वह तुम्हें रात के समय मिस्र से निकाल लाया। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें जो आशीषें दी हैं उनके अनुपात में स्वतंत्र इच्छा से भेंट देकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए सप्ताहों का पर्व मनाओ। अपने खलिहान और दाखमधु के कुंड की उपज इकट्ठा करने के बाद 7 दिन तक झोपड़ियों का पर्व मनाना। अखमीरी रोटी का पर्व। सप्ताहों का पर्व। झोपड़ियों का पर्व। किसी भी व्यक्ति को भगवान के सामने खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल वा भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें कोई दोष या दोष हो, क्योंकि वह उसके लिए घृणित होगा। जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें दे रहा है, तो वहां के राष्ट्रों के घृणित आचरण का अनुकरण करना मत सीखना। तुम में से कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करता हो, जो भावी या जादूटोना करता हो, शकुनों का अर्थ बताता हो, जादूटोना करता हो या जादूटोना करता हो, या ओझा या भूत प्रेत जानता हो, या मरे हुओं से परामर्श करता हो। जो कोई ऐसे काम करता है वह यहोवा की दृष्टि में घृणित है, और इन घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे सामने से निकाल देगा। तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने निर्दोष रहना चाहिए। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा। तुम्हें उसकी बात अवश्य सुननी चाहिए। प्रभु ने मुझसे कहा, वे जो कहते हैं वह अच्छा है। मैं उनके लिए उनके भाइयों में से तेरे समान एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करूंगा। मैं अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनसे कहेगा। यदि कोई मेरी बातें न माने जो भविष्यद्वक्ता मेरे नाम से कहता है तो मैं आप ही उससे लेखा लूंगा। परंतु जो भविष्यद्वक्ता मेरे नाम से ऐसी कोई बात कहे जिसे मैंने उसे कहने की आज्ञा न दी हो या जो भविष्यद्वक्ता दूसरे देवताओं के नाम से कुछ कहे वह अवश्य मार डाला जाए। तुम अपने आप से कह सकते हो, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई संदेश प्रभु ने नहीं कहा है? यदि भविष्यवक्ता प्रभु के नाम पर जो घोषणा करता है वह पूरा नहीं होता या सच नहीं होता तो यह एक संदेश है जिसे प्रभु ने नहीं कहा है। उस भविष्यवक्ता ने अभिमानपूर्वक बात कही है, उससे मत डरो। यदि कोई अपने पड़ोसी से बैर रखता हो और उसकी घात में बैठा हो, उस पर आक्रमण करता हो और उसे मार डालता हो, तुम्हें इसराइल को निर्दोष रक्त बहाने के अपराध से मुक्त करना होगा। अपने पड़ोसी की सीमा का पत्थर मत हिलाओ। किसी भी अपराध या अपराध के आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए एक गवाह पर्याप्त नहीं है। यदि किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया जाए और उसके शव को एक पेड़ पर लटका दिया जाए तो तुम्हें उसके शरीर को रात भर पेड़ पर नहीं छोड़ना चाहिए। उसे उसी दिन गाड़ना सुनिश्चित करो, क्योंकि जो कोई पेड़ पर लटकाया जाता है वह परमेश्वर के शाप के अधीन होता है। संकलक की टिप्पणी, मसीह ने हमारे लिए अभिशाप बनकर हमें कानून के अभिशाप से बचाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई पेड़ पर लटकाया जाता है वह शापित है। गलातियों 3:13 से टिप्पणियां समाप्त करें। यदि तू अपने भाई के बैल या भेड़ को भटकते हुए देखे तो उसे नजरअंदाज न करना, परंतु उसे उसके पास अवश्य लौटा देना। किसी स्त्री को पुरुषों के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और न ही किसी पुरुष को स्त्रियों के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि जो कोई ऐसा करता है तेरा परमेश्वर यहोवा उससे घृणा करता है। यदि कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ सोता हुआ पाया जाए तो उसके साथ सोने यौन संबंध रखने वाले पुरुष और महिला दोनों को मरना होगा। किसी व्यक्ति को अपने पिता की पत्नी से विवाह नहीं करना चाहिए, उसे अपने पिता के बिछौने का अपमान नहीं करना चाहिए। संकलक की टिप्पणी, वास्तव में यह बताया गया है कि आपके बीच यौन अनैतिकता, ग्रीक शब्द पोर्निया, व्यभिचार से है और इस तरह की अन्य जातियों के बीच भी बर्दाश्त नहीं की जाती है, क्योंकि एक आदमी के पास अपने पिता की पत्नी है। 1 कुरिन्थियों 5:1-2 टिप्पणियां समाप्त करें। यदि कोई पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो उसे अप्रसन्न हो जाती है क्योंकि उसे उसमें कुछ अशोभनीय लगता है और वह उसके लिए तलाक का प्रमाण पत्र लिखता है, उसे देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है, और यदि वह उसके घर से निकलने के बाद वह बन जाती है दूसरे आदमी की पत्नी और उसका दूसरा पति उसे नापसंद करता है और उसे तलाक का प्रमाण पत्र लिखता है, उसे देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है, या यदि वह मर जाता है तो उसका पहला पति जिसने उसे तलाक दे दिया है उसे उससे शादी करने की अनुमति नहीं है। उसके अपवित्र होने के बाद फिर से संकलक की टिप्पणी, तलाक के प्रमाण पत्र के साथ एक पत्नी को भेजना, हिब्रू शब्द क्रियत्वत विवाह विच्छेद से व्यभिचारिणी माने बिना पुनर्विवाह की अनुमति मिलती है। तलाक के प्रमाण पत्र के बिना, हिब्रू शब्द शलाच से तलाक नहीं लिया गया बल्कि बाहर रखा गया या भेजा गया, जो कोई भी दूसरे से विवाह करता है वह व्यभिचार कर रहा है क्योंकि वह अभी भी विवाहित है और इस प्रकार व्यभिचार कर रही है। विवाह अनुबंध तोड़ना। टिप्पणियां समाप्त करें। आज तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें इन नियमों और नियमों का पालन करने की आज्ञा दे रहा है। तुम्हें अपने पूरे दिल और अपनी पूरी आत्मा से ईमानदारी से उनका पालन करना चाहिए। आज तुमने घोषणा की है कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है और तुम उसके निर्देशों का पालन करोगे, उसके नियमों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करोगे और उसकी सुनोगे। आज प्रभु ने घोषणा की है कि आप उनके लोग हैं, उनकी अपनी विशेष संपत्ति हैं, जैसा कि उन्होंने आपसे कहा था। परंतु तुम्हें उसकी आज्ञाओं का पालन अवश्य करना चाहिए। तब वह तुम्हें उन सभी राष्ट्रों से ऊपर रखेगा जिन्हें उसने बनाया है। वह तुम्हें प्रशंसा, प्रसिद्धि और सम्मान देगा, और तुम अपने वादे के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र लोग बनोगे। तब मूसा और लेवीय याजकों ने सारे इसराइल से कहा, हे इसराइल, चुप रहो और सुनो। आज तुम अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा बन गए हो। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानो और उसकी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं का पालन करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। जब तुम यर्दन पार करोगे, तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गोत्र गिरिज्जीम पर्वत पर खड़े होकर लोगों को आशीर्वाद देंगे। और रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नप्ताली ये गोत्र एबाल पर्वत पर खड़े होकर शाप दें। लेवीय इसराइल के सब लोगों को ऊंचे शब्द से सुनाएं, तब सब लोग कहें, शापित है वह मनुष्य जो किसी मूरत को खोदता या गढ़ती है, जो यहोवा के लिए घृणित वस्तु है, जो कारीगर के हाथ की बनी हुई है और उसे गुप्त रखता है। शापित है वह मनुष्य जो अपने पिता व अपनी माता का अनादर करता है। शापित है वह मनुष्य जो अपने पड़ोसी की सीमा का पत्थर हटाता है। शापित है वह मनुष्य जो अंधे को मार्ग में भटका देता है। शापित है वह मनुष्य जो परदेशी, अनाथ व विधवा का न्याय रोक देता है। शापित है वह मनुष्य जो अपने पिता की पत्नी के साथ सोता है, क्योंकि वह अपने पिता के बिछौने का अपमान करता है। शापित है वह मनुष्य जो किसी पशु के साथ यौन संबंध करे। शापित है वह पुरुष जो अपनी बहन व अपने पिता की बेटी व अपनी माता की बेटी के साथ सोए। स्मरण करो, दाऊद के पुत्र अम्नोन ने अपनी सौतेली बहन तामार के साथ बलात्कार किया। 2 शमूएल 13:12 देखें। शापित है वह पुरुष जो अपनी सास के साथ सोता है। शापित है वह मनुष्य जो अपने पड़ोसी को छिपकर मार डालता है। शापित है वह मनुष्य जो किसी निर्दोष को मार डालने के लिए घूस लेता है। शापित है वह मनुष्य जो इस व्यवस्था की बातों पर चलकर उनका पालन नहीं करता। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से आज्ञा मानोगे और उसकी सब आज्ञाओं का ध्यान से पालन करोगे, तो मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें पृथ्वी पर सब जातियों से ऊपर ऊंचा करेगा। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानोगे, तो ये सभी आशीषें तुम पर आएंगी और तुम्हारा साथ देंगी। तो भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा न मानोगे और उसकी सब आज्ञाओं और विधियों का ध्यानपूर्वक पालन न करोगे, तो मैं तुम्हें आज जो आज्ञा देता हूँ, वे सब शाप तुम पर आ पड़ेंगे। देश, तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने का बर्तन शापित होगा। तेरे गर्भ का फल और तेरी भूमि की उपज और तेरे गाय बैल के बच्चे और तेरी भेड़ बकरी के बच्चे शापित होंगे। जब तुम भीतर आओगे तब शापित होगे और जब बाहर जाओगे तब शापित होगे। जिस किसी काम में तुम हाथ लगाओगे उसमें यहोवा तुम पर शाप, भ्रम और फटकार भेजेगा, जब तक कि तुम नष्ट न हो जाओ और उस बुराई के कारण जो तुमने उसे त्याग कर किया है अचानक नष्ट हो जाओ। यदि तुम इस व्यवस्था के सब वचनों का, जो इस पुस्तक में लिखे हुए हैं, ध्यानपूर्वक पालन नहीं करते और इस महिमामय और भययोग्य नाम अर्थात यहोवा अपने परमेश्वर का आदर नहीं करते, तो यहोवा तुम्हें सब जातियों में एक छोर से तितर-बितर कर देगा, पृथ्वी दूसरे को। जब ये सब आशीर्वाद और शाप जो मैंने तेरे सामने रखे हैं वे तुझ पर आ पड़े और जहाँ जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जाति जाति में तितर बितर कर दे, वहाँ तू उनको मन में ले लेना, और जब तू और तेरे लड़के बाले अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आए और अबके सब लोगों समेत उसकी आज्ञा माने, मैं आज तुझे मन और सारे प्राण से सब बातों के अनुसार आज्ञा देता हूँ, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे लौटा देगा और तुझ पर दया करेगा, और उन सब जातियों में से जहां उसने तुझे तितर बितर किया है, तुझे फिर इकट्ठा करेगा। चाहे तुम्हें स्वर्ग के नीचे सबसे दूर देश में निर्वासित कर दिया गया हो, वहां से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें इकट्ठा करेगा और वापस ले आएगा। वह तुम्हें उस देश में पहुंचाएगा जो तुम्हारे पुरखाओं का है, और तुम उस पर अधिकार करोगे। वह तुम्हें तुम्हारे पुरखाओं से भी अधिक समृद्ध और गिनती में बढ़ाएगा। तो भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा न मानोगे और उसकी सब आज्ञाओं और विधियों का ध्यानपूर्वक पालन न करोगे, तो मैं तुम्हें आज जो आज्ञा देता हूँ वे सब शाप तुम पर आ पड़ेंगे। देश तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने का बर्तन शापित होगा। तेरे गर्भ का फल और तेरी भूमि की उपज और तेरे गाय बैल के बच्चे और तेरी भेड़ बकरी के बच्चे शापित होंगे। जब तुम भीतर आओगे तब शापित होगे और जब बाहर जाओगे तब शापित होगे। जिस किसी काम में तुम हाथ लगाओगे उसमें यहोवा तुम पर शाप, भ्रम और फटकार भेजेगा, जब तक कि तुम नष्ट न हो जाओ और उस बुराई के कारण जो तुमने उसे त्याग कर किया है अचानक नष्ट हो जाओ। यदि तुम इस व्यवस्था के सब वचनों का जो इस पुस्तक में लिखे हैं ध्यान से पालन न करो और इस महिमामय और भययोग्य नाम अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा का आदर न करो, तब यहोवा तुम्हें पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सब राष्ट्रों में तितर बितर कर देगा। जब ये सब आशीर्वाद और शाप जो मैंने तेरे सामने रखे हैं वे तुझ पर आ पड़े और जहां जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जाति जाति में तितर बितर कर दे, वहां तू उनको मन में ले लेना, और जब तू और तेरे लड़के बाले अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आए और अब के सब लोगों समेत उसकी आज्ञा माने, मैं आज तुझे मन और सारे प्राण से सब बातों के अनुसार आज्ञा देता हूँ, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे लौटा देगा और तुझ पर दया करेगा, और उन सब जातियों में से जहां उसने तुझे तितर बितर किया है तुझे फिर इकट्ठा करेगा। चाहे तुम्हें स्वर्ग के नीचे सबसे दूर देश में निर्वासित कर दिया गया हो, वहां से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें इकट्ठा करेगा और वापस ले आएगा। वह तुम्हें उस देश में पहुंचाएगा जो तुम्हारे पुरखाओं का है और तुम उस पर अधिकार करोगे। वह तुम्हें तुम्हारे पुरखाओं से भी अधिक समृद्ध और गिनती में बढ़ाएगा। देखो, मैं आज तुम्हारे सामने जीवन और समृद्धि, मृत्यु और विनाश रखता हूँ, क्योंकि मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके मार्गों पर चलो और उसकी आज्ञाओं, विधियों और विधियों का पालन करो, तब तुम जीवित रहोगे और बढ़ोगे और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में आशीष देगा जिसके अधिकार नहीं होने को तुम जा रहे हो। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू आज्ञा न माने और पराए देवताओं के आगे झुककर उनको दंडवत करने लगे, तो मैं आज तुझसे कहता हूँ कि तू निश्चय नष्ट हो जाएगा। जिस देश में प्रवेश करने और उस पर अधिकार करने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उसमें तू अधिक दिन तक जीवित न रहेगा। आज के दिन मैं स्वर्ग और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध गवाह बनाता हूँ, जिन्हें मैंने तुम्हारे सामने रखा है, जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप। अब जीवन को चुन लो कि तुम और तुम्हारे बच्चे जीवित रहें, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी वाणी सुनो और उस पर स्थिर रहो, क्योंकि यहोवा तुम्हारा जीवन है और वह तुम्हें उस देश में बहुत वर्ष के लिए देगा जिसे देने की उसने तुम्हारे पूर्वजों इब्राहीम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। तब मूसा ने बाहर जाकर सारे इसराइल से ये बातें कही कि मैं अब 120 वर्ष का हो गया हूँ और अब तुम्हें ले चलने में समर्थ नहीं हूँ। यहोवा ने मुझसे कहा है, तुम यर्दन पार न होने पाओगे, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर आप ही तुम्हारे आगे आगे पार हो जाएगा। वह उन जातियों को तेरे सामने से नाश करेगा और तू उनके देश पर अधिकार कर लेगा। जैसा कि यहोवा ने कहा है, यहोशू भी तुम्हारे आगे आगे पार हो जाएगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलवाकर सारे इसराइल के सामने उससे कहा, दृढ़ और साहसी बन, क्योंकि तुझे इन लोगों के संग उस देश में जाना होगा जिसे देने के लिए थे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी और उसे बांट देना। यहोवा तो तुम्हारे आगे आगे चलता है और तुम्हारे संग रहेगा। यहोवा ने मूसा से कहा, अब तेरी मृत्यु का दिन निकट है। यहोशू को बुलाओ और मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हो जाओ, जहां मैं उसे नियुक्त करूंगा। तब मूसा और यहोशू आकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा बादल के खंभे के रूप में तंबू में प्रकट हुआ और बादल तंबू के द्वार पर ठहर गया। और यहोवा ने मूसा से कहा, तू अपने पुरखाओं के संग विश्राम करने जा रहा है। यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, तू दृढ़ और साहसी हो, क्योंकि तू इसराइलियों को उस देश में ले आएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर कहा है, और मैं तेरे संग रहूंगा। जब मूसा ने इस व्यवस्था के वचनों को आरंभ से अंत तक पुस्तक में लिख लिया, तब उसने यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवियों को यह आज्ञा दी कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लो और इसे संदूक के पास रख दो। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की वाचा, वहां वह तुम्हारे विरुद्ध साक्षी बनकर रहेगी। जब मूसा ने इस व्यवस्था के वचनों को आरंभ से अंत तक पुस्तक में लिखना समाप्त किया, तब उसने यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवियों को यह आज्ञा दी कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लो और इसे संदूक के पास रख दो, वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तेरे विरुद्ध साक्षी ठहरेगी। उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, अबारीम पर्वतमाला में जेरिको के पार मोआब में नबो पर्वत तक जाओ और कनान को देखो, वह भूमि जो मैं इसराइलियों को उनके अधिकार के रूप में दे रहा हूँ। वहां जिस पहाड़ पर तू चढ़ गया है उसी पर तू मर जाएगा और अपने लोगों में जा मिलेगा, जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मर गया और अपने लोगों में जा मिला। इसका कारण यह है कि तुम दोनों ने सीन मरुभूमि में मरीबा कादेश के जल के पास इसराइलियों के सामने मुझ पर विश्वास तोड़ दिया और इसराइलियों के बीच में मेरी पवित्रता को कायम न रखा। इसलिए तू भूमि को दूर से ही देख सकेगा, तुम उस देश में प्रवेश न करने पाओगे जो मैं इसराइल के लोगों को दे रहा हूँ। तब मूसा मोआब के मैदान से यरीहो के पार पिसगा की चोटी तक नीबो पर्वत पर चढ़ गया। वहाँ यहोवा ने उसे सारा देश दिखाया, गिलाद से दान तक, नप्ताली का सारा प्रदेश, एप्रैम और मनश्शे का प्रदेश, पश्चिमी समुद्र तक यहूदा का सारा प्रदेश, नेगेव और यरीहो की घाटी से लेकर सारा प्रदेश, पाम शहर, जोर तक। तब यहोवा ने उससे कहा, यह वह देश है जिसे मैंने इब्राहीम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहाया कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा। मैंने तुम्हें इसे अपनी आंखों से देखने दिया है, परंतु तुम इसमें प्रवेश न करोगे। और यहोवा का सेवक मूसा वहीं मोआब में मर गया, जैसा यहोवा ने कहा था। उसने उसे मोआब में बेतपोर के सामने की घाटी में दफनाया, परंतु आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। तब से इसराइल में मूसा के समान कोई भविष्यद्वक्ता नहीं हुआ जिससे यहोवा आमने सामने बातें करता था और जिससे यहोवा ने मिस्र में फिरौन और उसके सब हाकिमों और उसके सारे देश में जो चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था वे सब दिखाए, क्योंकि जो सामर्थ मूसा ने सारे इसराइल के सामने की वह किसी ने कभी नहीं दिखाई और न ऐसे भयानक काम किए। संकलक की टिप्पणी, नाजरेत के यीशु ने सभी प्रकार के संकेत, चमत्कार और चमत्कार किए, जिसमें एक मृत को चार दिनों तक जीवित करना भी शामिल था। यहूदियों के नेताओं ने इस चमत्कार को अस्वीकार कर दिया, इस प्रकार उनके हृदय कठोर हो गए। मिस्र के नेता फिरौन की तरह ही यहूदियों के नेताओं ने इन चमत्कारों को खारिज कर दिया, जो साबित करते हैं कि वे ईश्वर के दूत थे। टिप्पणी समाप्त करें।